This is Vivek Kumar Hin, BA Part 2, Faculty of Social Sciences. Now I am going to record Mauryan culture, Mauryayugin Sanskriti, from the book K.C. Srivastava, Prachin Bharati ka Itihas tatha Sanskriti. Magad Samrajya ke utkarsh ki jo prakriya Bimbisar se prarambh hui, woh Maurya samraton ke adhin purnata ko prapt hui. देश में प्रथम बार एक विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी बनने का गौरव पाटलिपुत्र को प्राप्त हुआ। राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता के वातावरण में भौतिक सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त था। वह न केवल एक महान विजेता ही था, अपितु एक उच्च कोटि का प्रशासक भी था। वह युद्ध के समय जितना स्फूर्तिवान था, शांति काल में उससे कहीं अधिक कर्मठ था। उसके नेतृत्व में भारतवर्ष ने सर्वप्रथम राजनीतिक केंद्रीकरण के दर्शन किए थे तथा चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। उसने जिस विस्तृत शासन व्यवस्था की नींव डाली, उसके अनेक तत्व यद्यपि ईरानी और यूनानी शासन से ग्रहण किए गए थे, तथापि वह पर्याप्त अंशों में अद्भुत व मौलिक ही थी। इस शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में जनता का हित साधन करना था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीस की इंडिका से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी भारत में मौर्य प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुमूल्य सामग्रियां प्रदान करता है। यहां हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर उसकी शासन व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। प्रथम बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही हम राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा पाते हैं, जहां वह इसे सात प्रकृतियों की समष्टि कहता है। इनमें सम्राट की स्थिति कुटस्थनीय होती थी। राजा में सभी अधिकार एवं शक्तियां निहित थी। सम्राट अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, फिर भी वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। वह सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था। वह सेना का सबसे बड़ा सेनापति, न्याय का प्रधान न्यायाधीश, कानूनों का निर्माता तथा धर्म प्रवर्तक माना जाता था। शास्त्र तथा राजा के न्याय में विरोध होने पर अंतिम यानी कि राजा के न्याय को ही प्रमाण माना जाता था। वह साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था और इस प्रकार वह प्रशासन का प्रमुख स्रोत था। उसकी दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। मेगास्थनीस हमें बताता है कि वह दिन में नहीं सोता था, अपितु निर्णय देने या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे दिन राज्यसभा में बैठा रहता था और प्रजा के प्रतिवेदनों को सुना करता था। इस कार्य में वह किसी प्रकार का अवरोध सहन नहीं कर सकता था। जब उसका शरीर आबनूस के मुगदरों एबोनी रूल्स से दबाया जाता था अथवा उसके शरीर की मालिश का समय रहता था, तब भी वह प्रजा की शिकायतों को सुना करता था। अपने बाल झाड़ने तथा संवारने के समय भी उसे जनता के कार्य से छुट्टी नहीं थी। इस समय वह राजदूतों की बात सुना करता था। इस विषय में कौटिल्य का भी स्पष्ट मत था कि राजा को प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए तथा प्रजा से अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह स्पष्टतः चेतावनी देता है कि जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ है, उसके अधिकारी प्रजा के कामों को अव्यवस्थित कर देते हैं, जिससे राजा या तो प्रजा का कोपभाजन बनता है या शत्रुओं का शिकार होता है। अतः राजा को सदा उद्योगपरायण अर्थात कार्य में संलग्न रहना चाहिए, यही उसका व्रत है। सम्राट मुख्यतः राजधानी में रहता था तथा विशाल राज प्रासाद में निवास करता था। उसकी राज्यसभा ऐश्वर्य एवं शान शौकत से परिपूर्ण होती थी। वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान रखता था। वह सदैव सशस्त्र अंगरक्षकों से घिरा रहता था। राजमहल से बाहर निकलने पर मार्ग में सशस्त्र सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते थे। इस प्रकार कौटिल्य की व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। राज्य के सप्तांगों में वह सम्राट को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। उसके शेष अंग औमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र सम्राट के द्वारा ही संचालित होते थे तथा अपने अस्तित्व के लिए उसी पर निर्भर करते हैं। राजा, राज्यमिति, प्रकृति, संक्षेप। औमात्य, मंत्री तथा मंत्री परिषद। सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य या सचिव एक सामान्य संज्ञा थी जिससे राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था। यूनानी लेखक इन्हें सभासद तथा निर्धारक, काउंसिलर्स एंड एक्सेसर्स कहते हैं। ये सार्वजनिक कार्यों में सम्राट की सहायता करते थे। उनकी संख्या यद्यपि कम थी तथापि वे अत्यंत प्रभावशाली थे। प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन उन्हीं के परामर्श से किया जाता था, परंतु वे सभी मंत्री नहीं होते थे। वह अपने अमात्यों में से जो सभी प्रकार के आकर्षणों से परे हुआ करते थे मंत्री नियुक्त करता था। ये मंत्री एक छोटी उप समिति के सदस्य थे जिसे मंत्रिणह कहा जाता था। इसमें कुल 3 या 4 सदस्य होते थे। आत्ययिक जिनके बारे में तुरंत निर्णय लेना हो, विषयों में मंत्रिणों से परामर्श की जाती थी। संभवतः इनमें युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति तथा सन्निधाता यानी कि कोषाध्यक्ष आदि सम्मिलित थे। मंत्रिणों के अतिरिक्त एक नियमित मंत्रिपरिषद भी होती थी जिसकी सदस्य संख्या अवश्य ही काफी बड़ी होगी, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार बड़ी मंत्रिपरिषद रखना राजा के अपने हित में होता है और उसकी मंत्र शक्ति बढ़ती है। इस प्रसंग में वह 1,000 सदस्यों वाली इंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है जिसके कारण उन्हें सहस्ताक्ष कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 वार्षिक वेतन मिलता था। आवश्यक कार्यों के विषय में निर्णय लेने के लिए इसकी सभा बुलाई जाती थी तथा बहुमत से निर्णय लिए जाते थे, किंतु सम्राट को यह अधिकार था कि वह बहुमत के निर्णय की उपेक्षा कर अल्पमत के निर्णय को ही स्वीकार करे यदि ऐसा करना राष्ट्र के हित में हो। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिणों का क्या संबंध था यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा लगता है कि मंत्रिणों के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होते थे। मंत्रिणों के सदस्यों को 48,000 वार्षिक वेतन मिलता था। राजा प्रायः मंत्रिणों तथा मंत्रिपरिषद की ही परामर्श से शासन कार्य करता था। अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को एक वैधानिक आवश्यक बताया गया है। उसके अनुसार राजत्व केवल सबकी सहायता से ही संभव है, सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकती। अतः राजा को सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनसे मंत्रणा लेनी चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र वर्णित है, राजवृत्ति 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा अनुमेय। जो अपनी आंखों से देखा जाए वह प्रत्यक्ष, जो दूसरे लोग बताएं वह परोक्ष, तथा कृत कार्यों को देखकर शेष का अनुमान कर लेना ही अनुमेय है। राजा के पास अनेक काम होते हैं जो एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते। ये काम भिन्न भिन्न स्थानों में होते हैं और अकेला राजा उन्हें पूरा नहीं कर सकता। अतः राजा मंत्रियों को नियुक्त करके उन कार्यों को संपन्न करवाए। दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र में मंत्रियों तथा अध्यक्षों में कोई खास अंतर नहीं था, इसी कारण कौटिल्य ने मंत्रियों के विभागों का अलग से उल्लेख नहीं किया है। मंत्रिपरिषद का कार्य अनारब्ध कार्य को प्रारंभ करना, आरंभ हुए को पूरा करना, पूरे हुए कार्य में सुधार करना तथा राजकीय आदेशों का कठोरता के साथ पालन करवाना बताया गया है। केंद्रीय अधिकारी तंत्र। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है। पहला मंत्री और पुरोहित, दूसरा समाहर्ता, तीसरा सन्निधाता, चौथा सेनापति, पांचवां युवराज, छठा प्रदेष्टा, सातवां नायक, आठवां कर्मांतिक, नौवां व्यवहारिक, दसवां मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, ग्यारहवां दंडपाल, बारहवां अंतपाल, तेरहवां दुर्गपाल, चौदहवां नागरक, पंद्रहवां प्रशस्ता, सोलहवां द्वारिक, सत्रहवां अंतर्वंशिक तथा अठारहवां आटविक। इनमें मंत्री तथा पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख पदाधिकारी धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों ही विभाग कौटिल्य के अधीन थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति युद्ध का विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था जो अपने पिता के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में उसकी मदद करता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक, कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक, नगर की प्रमुख अधिकारी, प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी, दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, आंतरवंशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान तथा आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये उच्च श्रेणी के अधिकारी थे। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इन्हें अध्यक्ष कहा गया है, जिनके जिम्मे कोई न कोई सरकारी विभाग होता था। अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। संभवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। इसमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं: पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष सुनाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष यानी कि बुचड़ खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष यानी कि वैश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष यानी कि राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, उसके बाद आकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, देन कुप्याध्यक्ष यानी कि वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष यानी कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष यानी धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष यानी कि छापे खाने का अध्यक्ष, मिंट हाउस का अध्यक्ष, देन सुवर्णाध्यक्ष, सदगोष्ठाध्यक्ष यानी पशुधन विभाग का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन में अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था तथा उन्हें 1000 पन्ना वार्षिक वेतन मिलता था। मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वर्णन करते हुए मेगस्थनीज लिखता है कि इनमें से कुछ बाजार, कुछ नगर, कुछ सेना के अधिकारी थे, कुछ नदियों की देखभाल करते थे तथा बंद जल संग्रहों क्लोज्ड रिजर्वायर्स जिनके द्वारा नदियों में पानी बहता था का निरीक्षण करते थे ताकि सबको समान जल प्राप्त हो सके। वे आखेटकों के भी अधिकारी थे तथा उन्हें पुरस्कृत अथवा दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त था। वे कर संग्रह करते तथा भूमि संबंधी व्यवसायों जैसे लकड़ी काटना, बढ़ई गिरी, पीतल तथा खान में कार्य करने वालों का निरीक्षण करते थे। वे सार्वजनिक मार्गों का निरीक्षण करते थे तथा दूरी बताने के लिए प्रति 10 स्टेडिया पर स्तंभ स्थापित करते थे। जो नगरों के अधिकारी थे वे 5-5 सदस्यों वाली 6 परिषदों में विभक्त थे। यहां उल्लेखनीय है कि विभागीय अध्यक्ष भी अमात्यों में से नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रिणों के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य तथा तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। अब हम बात करेंगे प्रांतीय शासन की। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य बस ही प्रांतों में विभाजित रहा होगा, परंतु उसके साम्राज्यों के प्रांतों की निश्चित संख्या हमें ज्ञात नहीं है। उनके पौत्र अशोक के अभिलेखों से हमें उसके निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। पहला, उदिच्य यानी कि उत्तरापथ। इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है, वो है अवंती रठ। इस प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा है कलिंग, और कलिंग की राजधानी तोसली थी, तोसली। चौथा दक्षिणापथ, इसमें दक्षिणी भारत का प्रदेश सम्मिलित था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। के एस अयंगर इस स्थान की पहचान रायचूर जिले में स्थित आधुनिक कनकगिरी से करते हैं। पांचवा जो है वो है प्राच्य या प्रासी। इससे तात्पर्य पूर्वी भारत से है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उपयुक्त प्रांतों में से उत्तरापथ, अवंतीरठ तथा प्राच्य निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के भी समय में विद्यमान थे। यह असंभव नहीं कि दक्षिणापथ भी उसके साम्राज्य का एक अंग रहा हो। इन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, किंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पन्ना वार्षिक वेतन मिलता था। वे अनेक अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों का शासन चलाते थे। उनके पास अपनी मंत्रिपरिषद भी थी। अब हम बात करेंगे मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन की। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जिनकी समता हम आधुनिक कमिश्नरियों से स्थापित कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में इसी को प्रादेशिक कहा गया है। वह अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का कार्यों का निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थान ही होता था, जिसमें 800 ग्राम थे। स्थानीय के अंतर्गत दो द्रोणमुख थे, प्रत्येक के 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे खारवटिक तथा खारवटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण होते थे। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती तथा कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबंध करती थी। यदि वे देश से बाहर जाते थे तो यह उनकी अगुवाई एस्कॉर्ट करती थी तथा उनकी मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि संस्कार का भी प्रबंध करती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशियों के आचरण एवं उनकी गतिविधियों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखना भी समिति का कार्य था। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। विक्रय की वस्तुओं तथा माप तौल का नियंत्रण करना इसका कार्य था। किसी भी व्यक्ति को दो वस्तुओं को बेचने की अनुमति तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि वह दूना कर अदा न कर दे। पांचवी उद्योग समिति थी, जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती तथा मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलवाती थी। नई तथा पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग प्रबंध था। छठी कर समिति थी, जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। वह उत्पादन के मूल्य का 1/10 होता था। इस कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीस नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। यद्यपि अन्य नगरों के शासन के विषय में हमें ज्ञात नहीं है, तथापि इस विवरण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पाटलिपुत्र के समान दूसरे प्रमुख नगरों में भी समितियां रही होंगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य युग में नगरों को स्वायत्त शासन प्राप्त था। अब हम बात करेंगे ग्राम्य प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामनी होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था तथा वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था। अर्थशास्त्र ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख करता है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे, जो ग्राम शासन में ग्रामीणों की मदद करते थे। राज्य सामान्यतः ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्राम वृद्धों की परिषद न्याय का भी कार्य करती थी। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन ग्राम शासन के विषय में सोहगौरा जो कि गोरखपुर में है तथा महास्थान बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित के लेखों से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनमें जनता की सुरक्षा के लिए बनवाए गए कोष्ठागारों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में भी कोष्ठागार निर्माण की चर्चा है। इससे लगता है कि कर वसूली अन्नों के रूप में भी की जाती थी तथा इन्हें कोष्ठागारों में संचित किया जाता था। अब हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। मौर्यों के एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, पहला जो था वो धर्मस्थीय तथा दूसरा कंटक शोधन। इन न्यायालयों में बहुत अंतर स्पष्ट नहीं है, फिर भी हमें इन्हें सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। धर्मस्थीय यानी कि दीवानी तथा कंटक शोधन यानी कि फौजदारी। विदेशियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें संगठित की गई थी। दंड विधान अत्यंत कठोर थे। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे। कौटिल्य तीन प्रकार के अर्थ दंडों का उल्लेख करता है। पहला, पूर्व साहस दंड, यह 48 से लेकर 96 पना तक होता था। दूसरा, मध्यम साहस दंड, यह 200 से 500 पना तक होता था। तीसरा, उत्तम साहस दंड, यह 500 से 1000 पना तक होता था। इसके अतिरिक्त कैद, कोड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों की अंग क्षति करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। इस प्रकार का दंड करों की चोरी करने वालों तथा राजकीय धन का घोटाला करने वालों को भी मिलता था। कानून की शरण लोग बहुत कम लेते थे। एक बार जब वह चंद्रगुप्त के सैनिक शिविर में गया तो उसे पता चला कि संपूर्ण सेना में चोरी की गई वस्तुओं का मूल्य 200 ड्रेकमे से भी कम था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राज्य शासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था। इन चारों में राज्य शासन ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई थी। गलत बयान लिखने, निरपराध व्यक्ति को कारावास देने, अपराधी को छोड़ देने के दोष में न्यायाधीशों एवं न्यायालय के कर्मचारियों को दंड दिए जाते थे। अब हम बात करेंगे गुप्तचर विभाग, एस्पियोनेज डिपार्टमेंट। चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत प्रशासन की सफलता बहुत कुछ अंशों में कुशल गुप्तचर विभाग पर आधारित थी। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्यापरसप कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। इस विभाग में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से कर ली जाती थी। उपाधि भी शुद्धा मार्त्य वर्गो गूढ़ पुरुषानुत्पादेत। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिन कहा गया है। अब हम बात करेंगे लैंड एंड रेवेन्यू यानी कि भूमि तथा राजस्व। चंद्रगुप्त की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। कुछ राजकीय भूमि खेती करने के लिए कृषकों को भी दे दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 होता था, परंतु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा दिया जाता था। अर्थशास्त्र तथा यूनानी प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य शासन में कृषि की आय पर लोगों को 25% तक कर देना पड़ता था। ऐसी भूमि से तात्पर्य राजकीय भूमि से है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि यदि कोई किसान अपने हल, बैल, उपकरण, बीज आदि लगाकर राजकीय भूमि पर खेती करता था तो उसे उपज का आधा भाग प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त किसानों के पास व्यक्तिगत भूमि भी होती थी। ऐसे लोग अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे। भूमि कर को भाग कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। नगरों में जल एवं भवन कर लगाए जाते थे। अर्थशास्त्र में भाग के साथ साथ बलि तथा कर का भी उल्लेख मिलता है। पहला संभवतः धार्मिक देय था, जबकि कर सामाजिक देय था जो समय समय पर जनता से वसूला जाता था। कालांतर में से दमनात्मक ऑप्रेसिव माना जाने लगा, जैसा कि जूनागढ़ लेख से ध्वनित होता है। रुम्मीन देई लेख में भी बलि का उल्लेख है। राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधन राजा की व्यक्तिगत भूमि से होने वाली आय, सीमा शुल्क, चुंगी, बिक्री कर, व्यापारिक मार्गों, सड़कों तथा घाटों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा यानी लाइसेंस शुल्क, अनुज्ञा कर यानी लाइसेंस शुल्क तथा आर्थिक दंड के रूप में प्राप्त हुए जुर्माने आदि थे। समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्र करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। स्थानीय तथा गोप नामक पदाधिकारी प्रांतों में करों को एकत्र करते थे। सरकारी आय का व्यय विभिन्न रूपों में होता था। उसका एक भाग सम्राट तथा उसके परिवार के भरण पोषण में, दूसरा भाग विविध पदाधिकारियों को वेतन आदि देने में, तीसरा भाग सैनिक कार्यों में, चौथा भाग लोकोपकारी कार्यों में जैसे सड़कों, नहरों, झीलों एवं जलाशयों के निर्माण में, तथा पांचवां भाग धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को दान देने में खर्च किया जाता था। इसके अतिरिक्त कारीगरों के लाभार्थ राज्य की ओर से चलाए जाने वाले उद्योगों को तथा खानों आदि में भी बहुत अधिक धन व्यय होता था। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए राज्य की ओर से औषधालय खोले जाते थे तथा दवाओं का वितरण होता था। इन कार्यों में भी बहुत अधिक धन लगता था। इस प्रकार अनेक मदों में सरकारी आय का व्यय हुआ करता था। अब हम बात करेंगे सेना का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सोल्जर आर्मी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी। इसमें 6,00,000 पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा संभवतः 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था तथा उनके अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना था। शांति के काल में वे आनंद एवं आराम का जीवन बिताते थे। युद्ध संबंधित समस्त सामग्रियां राज्य की ओर से प्रदान की जाती थी। विजय के उपलक्ष्य में पुरस्कार भी दिया जाता था। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। सीमांत प्रदेशों की रक्षा सुदृढ़ दुर्गों द्वारा की जाती थी। अंतपाल नामक पदाधिकारी दुर्गों के अध्यक्ष होते थे। वेलफेयर वर्क, लोकोपकारिता के कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य यद्यपि निरंकुश शासक था, तथापि उसने अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी तथा सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए। यातायात की सुविधा के लिए विशाल राजमार्गों का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक इतिहास प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। यह गिरनार यानी कि जूनागढ़ के समीप रैवतक तथा उर्जयत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर निर्मित की गई थी। कौटिल्य सिंचाई के लिए बांध बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। लगता है इसी से प्रेरित होकर इस झील का निर्माण हुआ। इससे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती थी। अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुषासप ने झील से पानी के निकास के लिए मार्ग बनवाए थे। किंतु चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था में सब कुछ अच्छा ही नहीं था। इसमें कुछ ऐसे दोष थे जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इस विस्तृत प्रशासन तंत्र में केंद्रीय नियंत्रण इतना प्रबल था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णतया कुचल दिया गया तथा सामान्य नागरिक कठोर नियंत्रण में जीवन यापन करने के लिए विवश हो गया था। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्रायः नगण्य थी। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। जो व्यक्ति के न केवल सार्वजनिक अपितु निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे तथा सभी प्रकार की गतिविधियों से सम्राट को अवगत कराते थे। नौकरशाही के अधिकार विस्तृत थे तथा प्रजा उत्पीड़न की गुंजाइश बराबर बनी हुई थी। दंड विधान अत्यंत कठोर थे। मृत्युदंड एवं अमानवीय यातनाएं आम बातें थी। अतः कुछ आधुनिक विद्वानों की आलोचना काफी दमदार है कि चंद्रगुप्त ने सुरक्षा की वेदी पर नागरिक स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी तथा साम्राज्य को एक पुलिस स्टेट में परिवर्तित कर दिया। यह अच्छी बात थी कि कालांतर ने अशोक ने प्रशासन की इन कमियों को पहचाना तथा उसमें यथोचित सुधार कर उसे अधिक लोकोपकारी तथा प्रजा के हितों के अनुकूल बना दिया। अब हम बात करेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार। एक महान विजेता एवं सफल धर्म प्रचारक होने के साथ ही साथ अशोक एक कुशल प्रशासक भी था। उसने किसी नई शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, अपितु अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में ही आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं सुधार कर उसे अपनी नीतियों के अनुकूल बना दिया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य धम्म का आधिकाधिक प्रचार हो गया। अशोक का धम्म प्रजा के नैतिक एवं भौतिक उत्थान का सबल माध्यम था। धम्म विषय की इस मूलभूत अवधारणा के फलस्वरूप परंपरागत प्रशासनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा उसने कुछ नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की। सम्राट तथा मंत्री परिषद। अशोक एक विस्तृत साम्राज्य का एक छत्र शासक था। उसने देवनाम पीए की उपाधि ग्रहण की। शास्त्री के अनुसार इसका उद्देश्य पुरोहितों का समर्थन प्राप्त करना था। इसके विपरीत रोमिला थापर का विचार है कि इस उपाधि का लक्ष्य राजा की दैवी शक्ति को अभिव्यक्त करना तथा अपने को पुरोहितों की मध्यस्थता से दूर करना था। उल्लेखनीय है कि अशोक के लेखों में पुरोहित का उल्लेख नहीं मिलता। चंद्रगुप्त के समय में यह एक महत्वपूर्ण पद था। इससे भी सूचित होता है कि पुरोहित का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप समाप्त हो चुका था। सिद्धांततः निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी अशोक एक प्रजावत्सल सम्राट था। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था और इस प्रकार राजत्व के संबंध में उसकी धारणा पितृपरक थी, पैटर्नल थी। वह प्रजाहित को सर्वाधिक महत्व देता था। अपने छठे शिलालोक में अशोक अपनी इस भावना को व्यक्त करते हुए कहता है, सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, ऐसा मेरा मत है। सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा काम नहीं है। मैं जो कुछ भी पराक्रम करता हूँ वह इसलिए कि भूतों के ऋण से मुक्त हो जाऊं, मैं उनको इस लोक में सुखी बनाऊं और वे दूसरे लोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकें। अशोक के अभिलेख में परीसा शब्द का भी उल्लेख हुआ है। वह अर्थशास्त्र की मंत्री परिषद थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि अशोक का प्रधानमंत्री यानी कि अग्रामात्य राधागुप्त था। ऊंचे कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने तथा उन्हें निर्देश देने का अधिकार भी परिषद को था। तीसरे तथा छठे शिलालेखों से मंत्री परिषद के कार्य पर प्रकाश पड़ता है। तीसरे लेख से पता चलता है कि परिषद के आदेश विधिवत लिखे जाते थे जिन्हें स्थानीय अधिकारी जनता तक पहुंचाते थे। छठे शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट के मौलिक आदेशों तथा विभागीय अध्यक्षों द्वारा आवश्यक विषयों पर लिए गए निर्णयों के ऊपर मंत्रिपरिषद विचार करती थी। अशोक कहता है कि यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो अथवा किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में मतभेद हो तो इसकी सूचना उसे तुरंत भेजी जाए। अब हम बात करेंगे प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। उसके अभिलेख में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला है थी, दूसरा अवंतीरठ जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तीसरा कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, चौथा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी और 5वां प्राच्य अथवा पूर्वी देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनके अतिरिक्त और भी प्रांत रहे होंगे। राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुशल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार तथा आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, कलिंग एवं उज्जैनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की गई थी। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था। महावंश से पता चलता है कि उसने अपने छोटे भाई तिस्य को उपराजा नियुक्त किया था, जिसके भिक्षु हो जाने पर अशोक का पुत्र महेंद्र इस पद पर नियुक्त हुआ। संभवतः उपराजा का पद प्रधानमंत्री जैसा होता था। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक पदाधिकारी। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन से कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक। युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक। युक्त जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते तथा उसका लेखा जोखा रखते थे और सम्राट की संपत्ति का भी प्रबंध करते थे। उन्हें उस कार्य में धन व्यय करने का भी अधिकार था जिससे राजस्व की वृद्धि हो सकती थी। अर्थशास्त्र में भी युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। वहां युक्त का वर्णन लेखाकार के रूप में मिलता है। स्पष्ट है कि ये अधीनस्थ कर्मचारी थे जिनका एक कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना तथा उसे मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना भी था। वे राजुक तथा प्रादेशिक के साथ दौरे पर जाते थे। और राजुक जो है वो, जैसा कि बुलर ने बताया है कि इस पदाधिकारी का संबंध जातक ग्रंथों के रज्जु गाहक यानी रस्सी पकड़ने वाला से है। इस प्रकार के पदाधिकारी भूमि की पैमाइश करने के लिए अपने पास रस्सी रखते थे। वे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी सेटलमेंट ऑफिसर की भांति होते थे। राजुक का पद जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता था। वे कई लाख लोगों के ऊपर नियुक्त किए गए थे। अपने चौथे स्तंभ में अशोक राजुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता की सुखी के लिए राजुकों की नियुक्ति की है। इस प्रकार राजुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का ही कार्य देखना पड़ता था। यहां उल्लेखनीय कि स्ट्रैबो मॉरिस प्रशासन में मजिस्ट्रेट के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख करता है जो नदियों की देखभाल करते थे, भूमि की पैमाइश करते थे तथा जिन्हें पुरस्कार एवं दंड का भी अधिकार था। तीसरा है प्रादेशिक। प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर जैसा था। उसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक ही अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदेष्टा नामक पदाधिकारी था, जिसे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देखरेख करना पड़ता था। 12वें शिलालेख में तीन और पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, धम्म महामात्र, अस्त्राध्यक्ष महामात्र तथा ब्रजभूमिक महामात्र। धम्म महामात्र अशोक की अपनी कृति थी, जिनकी नियुक्ति उसने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में की थी। उनका कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, राजा तथा उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। अस्त्राध्यक्ष महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। लगता है कि उसका एक कार्य सम्राट के अंतःपुर तथा महिलाओं के बीच धर्म प्रचार करना भी था। और ब्रजभूमिक जो है वो गोचर भूमि में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को ब्रज कहा गया है। संभव है ब्रज पशुओं के रक्षण तथा उनकी वृद्धि का भी ध्यान रखता था। ऐसा प्रतीत होता है कि महामात्र तथा पुरुष एक व्यापक संज्ञा थी, जिससे सभी उच्च पदाधिकारियों का बोध होता था। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में अशोक ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार किए। धौली तथा जौगढ़ के प्रथम पृथक शिलालेखों में वह नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि वे बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं न दें। वह उन्हें ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुरता, अविवेक, आलस्य आदि दुर्गुणों से मुक्त रहते हुए निष्पक्ष मार्ग का अनुकरण करने का उपदेश देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने से वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे तथा राजा के ऋण से भी मुक्त हो जावेंगे। 5वें शिलालेख से पता चलता है कि धर्म महामात्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्तियों का निरीक्षण करते थे। यदि उन्हें अकारण दंड मिला होता था तो वे मुक्त कर सकते थे। अपराधी का परिवार यदि बड़ा होता था तो उसे धन देते थे, अथवा यदि अपराधी अधिक वृद्ध होता था तब भी उसे स्वतंत्र करा देते थे। अशोक प्रति 5वें वर्ष न्यायाधीशों के कार्यों की जांच के लिए महामात्रों को दौरे पर भेजा करता था। न्याय प्रशासन में एक रूपता लाने के लिए अशोक ने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष राजुकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान कर दिया। गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। जो औषधियां देश में प्राप्त नहीं थी उन्हें बाहर से मंगवाकर आरोपित करवाया गया था। उसके अन्य लोक हितकारी कार्यों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे प्रबुद्ध राजतंत्र की। मौर्य प्रशासन की यदि हम आलोचनात्मक समीक्षा करें तो स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि सिद्धांत रूप में सम्राट की स्थिति निरंकुश शासक जैसी थी, तथापि व्यवहार में वह कदापि निरंकुश नहीं था। मौर्य शासक अपनी प्रजा के हितों के प्रति काफी सजग थे तथा उन्हें दिन रात इसकी चिंता बनी रहती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस अवधारणा का उल्लेख मिलता है। इस संबंध में भंडारकर महोदय का विचार है, यह मौर्य काल के राजकीय निरंकुशवाद रॉयल एब्सोल्यूटिज्म की ओर स्पष्ट संकेत करता है। जैसे बच्चे एकमात्र अपने माता पिता के अधीन होते हैं तथा वे उनके साथ यथेचित व्यवहार कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रजा राजा की कृपा पर निर्भर थी और राजा की स्थिति पूर्ण निरंकुश से बेहतर नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य सम्राट जनहित के प्रति अत्यंत प्रबुद्ध थे। कम से कम दो महान शासकों चंद्रगुप्त तथा अशोक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में प्रजा हित व्यक्तिगत हित से बढ़कर था। यही कारण है कि इतने विशाल साम्राज्य में ये सम्राट जीवन पर्यंत शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए तथा अपनी प्रजा के प्रिय पात्र बने रहे। अब हम बात करेंगे सामाजिक दशा, सोशल कंडीशन। मौर्य काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में बदल गए जिसका आधार जन्म था। यूनानी लेखकों के विवरण से जाति व्यवस्था के अत्यंत जटिल होने की सूचना मिलती है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। दार्शनिक पहला, दूसरा कृषक, तीसरा योद्धा, चौथा पशुपालक, पांचवां कारीगर, छठा निरीक्षक और 7वां मंत्री। कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और न उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था, परंतु दार्शनिक इसके अपवाद थे और वे किसी भी वर्ग के हो सकते थे। मेगस्थनीज का यह वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर किया गया जान पड़ता है। इससे न तो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का बोध होता है और न तत्कालीन समाज की बहुसंख्यक जातियों की ही सूचना मिलती है। दार्शनिक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग थे। उनका राज दरबार एवं समाज में बड़ा सम्मान था। राज्य अपने राजस्व का एक भाग दार्शनिकों के भरण पोषण पर व्यय करता था। उसके बाद देश की संख्या का बहुत बड़ा भाग कृषकों का था। वे सादगी का जीवन व्यतीत करते तथा नगर की चहल पहल से दूर रहते थे। मेगस्थनीज के अनुसार वे सदा अपने कामों में लगे रहते थे तथा जिस समय सैनिक युद्ध करते थे उस समय भी कृषक कृषि कर्म में व्यस्त रहते थे। कृषकों के बाद सबसे अधिक संख्या जो थी वो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे। ये वे केवल सैनिक कार्य किया करते थे। कृषक कारीगर तथा व्यापारी सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे। वे गांवों में निवास करते। पशुपालक तथा शिकारी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। कुछ शिकारी राज्य की ओर से कृषि को क्षति पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को नष्ट करने के लिए नियुक्त किए जाते थे और इस कार्य के लिए उनको पारितोषिक मिलता था। कारीगरों का समाज में बड़ा सम्मान था तथा उनकी अंग क्षति करने वाले राज्य की ओर से दंडित किए जाते थे। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। उन्हें संपत्ति रखने तथा बेचने का अधिकार प्राप्त था। उनके साथ अनुचित व्यवहार करने वाले स्वामी अर्थशास्त्र में दंडनीय बताए गए हैं। साधारणतः युद्ध में बंदी बनाए गए तथा मलेच्छ लोग ही दास के रूप में रखे जाते थे। अशोक के अभिलेखों में भी दासों तथा भृत्यों के साथ उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया है। अशोक के समय में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण जाति प्रथा की कठोरता में पर्याप्त शिथिलता आ गई थी। रोमिला थापर, आर एस शर्मा जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार मौर्यकालीन समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय होने की बात कहते हैं। वे भारतीय दासों की समता यूनान तथा रोम के दासों से स्थापित करते हैं। उनके अनुसार मौर्य काल में राजकीय नियंत्रण अत्यंत कठोर था। प्राकृतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग की लालसा से राज्य में शूद्र वर्ण को रोमीय हैलाटों की स्थिति में ला दिया गया। थापर ने बताया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के 1.5 लाख बंदियों को बंजर भूमि साफ कराने तथा नई बस्तियां बसाने के कार्य में नियोजित कर दिया। शर्मा मौर्यकालीन समाज की तुलना यूनान तथा रोम के समाज से करते हुए लिखते हैं, यूनान तथा रोम में दास जो कार्य करते थे ठीक वही कार्य भारत में शूद्र किया करते थे। यद्यपि भारतीय समाज दास समाज नहीं था, किंतु यह विचार अतिवादी है। यूनानी लेखक मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में दासों की दशा यूनान तथा रोम के दासों से कहीं बहुत अच्छी थी। किंतु मात्र जैसा आरसी मजुमदार का विचार है कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, किंतु ये सभी संभावनाएं ही हैं। यूनान तथा रोम के दास जो कुछ भी करते थे वह सभी आधुनिक मजदूरों द्वारा किया जाता था, किंतु मात्र कार्यों की समानता से ही कोई वेतनभोगी श्रमिक दास नहीं हो जाता है, जैसा कि डॉ ओम प्रकाश ने स्पष्ट किया है। दास की अवधारणा के अंतर्गत दास कहे जाने वाले का स्वामित्व दूसरे के पास होता है जो स्वामी कहलाता है। बंधुआ मजदूर दास श्रमिक नहीं होता तथा औद्योगिक मजदूर बंधुआ मजदूर नहीं कहा जा सकता। दासों की बड़ी संख्या के अभाव में बड़े पैमाने पर दासता की बात नहीं कही जा सकती। यदि हम यूनानी रोमन दासों को भारतीय शूद्र मान लें तो यह मानना पड़ेगा कि यहाँ शूद्र स्वतंत्र किसान नहीं थे तथा उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः वार्ता अर्थात कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य को शूद्र का धर्म बताया गया है। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। लड़कों के लिए वयस्कता की आयु 16 वर्ष तथा कन्याओं के लिए 12 वर्ष होती थी। स्मृतियों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार इस समाज में प्रचलित थे। तलाक की भी प्रथा थी। तलाक पति पत्नी की संपत्ति से संभव था। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री अपना पुनर्विवाह कर सकने के लिए स्वतंत्र थी। विवाहिता स्त्री के उपहार तथा आभूषण उसकी अपनी संपत्ति स्त्री धन होती थी। पति के अत्याचारों के विरुद्ध पत्नी न्यायालय में जा सकती थी। स्त्रियों के साथ अन्याय अथवा अत्याचार करने वाले राज्य की ओर से दंड किए जाते थे। कुलीन परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। समाज में अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन था। उच्च जाति के व्यक्ति का अपने नीचे की जाति में विवाह अनुलोम तथा उच्च जातीय कन्या का निम्न जातीय वर के साथ विवाह प्रतिलोम कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी कन्या के साथ विवाह हिंदू समाज में क्रांतिकारी कदम था। यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी। अर्थशास्त्र में स्त्री के लिए असुरविपस्या सूर्य को न देखने वाली अवरोधन तथा अंतःपुर शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि समाज में पर्दा प्रथा भी प्रचलित रही होगी। संभवतः यह उच्च कुलों तक ही सीमित थी। अर्थशास्त्र में गणिकाओं का उल्लेख हुआ है जिनकी देखरेख करने के लिए गणिकाध्यक्ष नामक पदाधिकारी नियुक्त होते थे। इस वर्ग की महिलाओं में अभिनेत्री नर्तकी गायिका आदि भी सम्मिलित थी। यूनानी लेखकों ने भारतीयों के अनुशासित एवं सरल जीवन का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज लिखता है कि लोग मितव्ययी तथा उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे। वे सत्य तथा गुणों का समान रूप से आदर करते थे। उनके भोजन में अन्न फल दूध तथा मांस सम्मिलित थे। अन्नों में गेहूं चावल तथा जौ का प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीयों के खाने के ढंग का इस प्रकार वर्णन किया है। जब वे खाने बैठते थे तो उनके सामने तिपोई के आकार की एक मेज रख दी जाती थी है। उसके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है। इसमें सर्वप्रथम चावल डाला जाता है। इसके बाद भोजन के अन्य पकवान एवं पदार्थ परोसे जाते हैं जो भारतीय विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। मौर्यकालीन भारतीय अच्छे वस्त्रों एवं आभूषणों के शौकीन थे। उनके कपड़े सोने एवं बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए होते थे। बड़े लोगों के पीछे छत्र धारण किए हुए सेवक चलते थे। रथ दौड़ घुड़ दौड़ सांड युद्ध हस्ती युद्ध मृगया आदि मनोविनोद के साधन थे। नट नर्तक गायक वादक माधुरी चारण विदूषक आदि विविध प्रकार के लोग नाना प्रकार के मनोरंजन किया करते थे। राज्य की ओर से अनेक प्रकार के उत्सवों व मेलों का आयोजन किया जाता था। अशोक ने कई हिंसक मनोरंजन के साधनों के ऊपर पाबंदी लगा दिया था। अब हम बात करेंगे आर्थिक दशा इकोनॉमिक कंडीशन इन द टाइम ऑफ मौर्यन। मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में होती थी। कृषक युद्ध तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त रहने के कारण अपना सारा समय खेतों में ही लगाते थे। लोहे के उपकरणों के भारी मात्रा में प्रयोग के कारण उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। इस काल में ही मूठदार कुल्हाड़ियों फाल हंसिए आदि का कृषि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारंभ हुआ। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन मिलता था। युद्ध के समय में भी सैनिकों को खेतों को हानि न पहुंचाने का आदेश रहता था। कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े तथा पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राज्य की ओर से गोपालक और शिकारी नियुक्त किए गए थे। अधिकांश बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि बड़ी उर्वर थी तथा प्रतिवर्ष दो फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। देश अकाल एवं अभाव से मुक्त था। गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, साग आदि प्रमुख फसलें थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। मेगस्थनीज लिखता है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था। कुछ पदाधिकारी नदियों का प्रबंध रखते थे ताकि उनसे पानी ठीक से नहरों द्वारा खेतों को पहुंचाया जा सके। मौर्य युग में व्यापार व्यवसाय की उन्नति हुई। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण तथा एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार प्रगति पर थे। इस समय भारत का बाह्य व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। बार बैरिकम नामक बंदरगाह सिंधु के मुहाने पर स्थित था। यूनानी रोमन लेखक भारत के समुद्री व्यापार का वर्णन करते हैं। एरियन हमें बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का एक प्रमुख उद्योग था। यह राज्य के नियंत्रण में होता था जो व्यापारियों को किराए पर जहाज देता था। नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी व्यापारिक जहाजों का नियंत्रण करता था। समुद्री मार्ग से आने वाली वस्तुएं आदि क्षतिग्रस्त हो जाती थी तो राज्य उन पर शुल्क नहीं लेता था या क्षति के अनुपात में उसे घटा देता था। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवाहों यानी व्यापारियों के काफिलों का उल्लेख मिलता है। देश का आंतरिक व्यापार भी प्रगति पर था। इस समय देश के अंदर व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग बंगाल के समुद्र तट पर स्थित ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। इसे उत्तरापथ कहा जाता था, जिस पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कन्याकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल एवं तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थित थे। दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर माहिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। इस प्रकार उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के भूभाग व्यापारिक मार्गों द्वारा परस्पर संयुक्त कर दिए गए। व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। पन्याध्यक्ष बिक्री की वस्तुओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता था व वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था ताकि व्यापारी जनता से अनुचित लाभ न कमा सकें। व्यापारियों के लाभ की दरें भी निश्चित कर दी गई थी तथा इससे अधिक लाभ राजकोष में जमा हो जाता था। व्यापारी स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% का मुनाफा कमा सकते थे। देश के भीतर व्यवसाय एवं उद्योग धंधे काफी विकसित अवस्था में थे। कपड़ा बुनना इस युग का एक प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार मदुरा, अपरांत, कलिंग, कांसी, बंग, वत्स तथा महिष में सर्वोत्कृष्ट प्रकार के सूती वस्त्र तैयार होते थे। अन्य वस्त्रों में दुकूल यानी कि श्वेत तथा चिकना वस्त्र तथा छौम यानी एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। चीन भूमि के कौशेय रेशमी वस्त्र तथा नेपाल के कंबल का उल्लेख मिलता है। चर्म उद्योग भी उन्नति पर था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है जो काफी सुंदर होते थे। विभिन्न शिल्पों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था, गाइल कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हुआ है, जैसे काष्ठकारों की श्रेणी, लुहारों की श्रेणी, चर्मकारों की श्रेणी, चित्रकारों की श्रेणी आदि। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों का निपटारा किया करते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहा जाता था। राज्य की ओर से विविध प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे। शिल्पकारों के सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। शिल्पी के हाथ अथवा आंख को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। जो उनका सामान चुराते थे उन्हें 100 पन्न का जुर्माना देना होता था। अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी जाती थी। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निस्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापन या धरन कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकनी काकनी कहे जाते थे। ये सिक्के शासकों सौदागरों और निगमों द्वारा प्रचलित किए जाते थे तथा इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार से बड़ी संख्या में प्राप्त चांदी के आहत सिक्कों में से अधिकतर मौर्य काल के ही हैं। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे में ढाले गए हैं। प्रधान सिक्का पन होता था जिसे रुपया रूप भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है जिसका अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई माह से प्रारंभ होता था। मौर्य काल में जनगणना के निमित्त एक स्थायी विभाग की स्थापना की गई थी। इसका उल्लेख मेगस्थनीज तथा कौटिल्य दोनों ने ही किया है। मेगस्थनीज के अनुसार तीसरी समिति नगर की जनगणना का कार्य करती थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि प्रत्येक ग्राम तथा नगर में चार वर्णों की जनगणना ग्रामीण अधिकारियों तथा जनगणना विभाग द्वारा की जाती थी। मनुष्यों के साथ ही साथ उनके व्यवसाय चरित्र आय व्यय आदि का भी पूरा ब्यौरा सुरक्षित रखा जाता था। इससे राज्य को विभिन्न वर्गों के ऊपर कर निर्धारित करने के काम में बड़ी सहायता मिलती थी। मौर्य शासन में निर्धन व्यक्तियों को धनी व्यक्तियों तथा साहूकारों के शोषण से बचाने के निमित्त उनके द्वारा उधार दिए जाने वाले धन पर ब्याज की दर सुनिश्चित कर दी गई थी। इन नियमों का पालन न करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की यह दर 15% वार्षिक होती थी। जनता को अकाल बाढ़ अग्नि जैसी दैवीय आपदाओं से बचाने के लिए भी राज्य की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। अकाल के समय राज्य की ओर से किसानों को बीज वितरित किए जाते थे तथा लोगों को अभावग्रस्त स्थानों से हटाकर संपन्न स्थानों में पहुँचाया जाता था। बाढ़ आने तथा आग लगने पर भी राज्य की ओर से राहत कार्य किए जाते थे। नागरिकों के स्वास्थ्य की ओर भी सरकार विशेष ध्यान देती थी। पूरे राज्य में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना करवाई गई थी। विदेशी नागरिकों की चिकित्सा के लिए अलग से प्रबंध किया गया था। नगरों में सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। इन सब से स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य युग में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को चरितार्थ किया गया था। अब हम बात करेंगे धार्मिक दशा रिलीजियस कंडीशन ऑफ मौर्य मौर्याज। मौर्य काल में अनेक धर्म एवं संप्रदाय प्रचलित थे। इस काल के सम्राटों की धार्मिक विषयों में सहिष्णुता की विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के विकास का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस समय के मुख्य धर्म एवं संप्रदाय वैदिक बौद्ध जैन आजीवक आदि थे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म। समाज के उच्च वर्गों में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। अनेक वैदिक देवताओं की पूजा होती थी तथा विविध प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी था। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। अर्थशास्त्र में अपराजित अप्रतिहित जयंत वैजयंत शिव वैष्णव अश्विन श्रीमादिरा यानी कि दुर्गा अदिति सरस्वती सविता अग्नि सोम कृष्ण आदि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। पुरोहित यज्ञ कराते थे। यज्ञों के अवसर पर पशुओं की बलि भी दी जाती थी। अशोक के प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि उसके राज्य में सर्वत्र पशु बलि होती थी जिसे बंद कराने के लिए उसने आदेश जारी किए थे। अर्थशास्त्र में राजप्रासाद के समीप बनी हुई यज्ञशाला यानी कि इज्या स्थानम का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों का एक वर्ग संन्यासियों का था। वे जंगलों में रहकर कठोर साधना तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। संन्यासियों को श्रमण कहा जाता था। यूनानी लेखकों ने उनके ज्ञान एवं सदाचरण की बहुत प्रशंसा की है। मेगस्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक इस प्रकार के आश्रमवासी संन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। उपयुक्त देवी देवताओं के अतिरिक्त इस समय अग्नि नदी समुद्र पर्वत नाग आदि की भी पूजा की जाती थी। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे। ज्योतिषियों भविष्यवक्ताओं शकुन विचारकों आदि का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। उसने यह घोषित किया, जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी शक्ति एवं साधनों को नियोजित कर दिया। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया तथा लंका तक फैल गया। अशोक के ही समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई, जिसकी समाप्ति पर विभिन्न दिशाओं में प्रचारक मंडल भेजे गए। परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के उत्तराधिकारियों में शालिशुक भी बौद्ध मतानुयायी था, जिसने उसी के समान धम्म विजय की थी। अब हम बात करते हैं आजीवक तथा निर्ग्रंथ। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। वे बुद्ध व महावीर के समकालीन थे। मौर्य युग तक आते आते यह एक प्रबल संप्रदाय बन चुका था। अशोक के सातवें स्तंभ लेख में आजीविकों का भी उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष इस संप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए बराबर पहाड़ी पर दो गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार बनवाए थे। इस संप्रदाय के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर दोनों ही वर्ग के सन्यासी सम्मिलित थे। निर्ग्रंथ से तात्पर्य जैन धर्म से है। यह भी श्रमणों का ही एक वर्ग था। अशोक के लेखों में निर्ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। मेगस्थनीज ने इन्हें नग्न साधु कहा है। परंपरा के अनुसार इस संप्रदाय के महान आचार्य भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन मत में दीक्षित किया था। अशोक का एक उत्तराधिकारी संप्रति जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म का संरक्षक था। इस समय जैन धर्म भारत के पश्चिमी प्रदेशों में फैला था। दिव्यावदान के अनुसार निर्ग्रंथ लोग अशोक के समय में उत्तरी बंगाल के पुनर्वर्धन प्रदेश में भी निवास करते थे, परंतु आजीविकों के समान वे लोग मौर्य राजाओं से दान नहीं पा सके। अब हम बात करेंगे भक्ति संप्रदाय का उदय। मौर्य युगीन भारत के धार्मिक जीवन में भक्ति संप्रदाय का उदय हो चुका था। बुद्ध को देवता मानकर उनकी धातुओं एवं प्रतीकों की पूजा की जाने लगी। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख हेराक्लीज नाम से किया है। अब हम बात करेंगे भाषा एवं साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेख पाली यानी प्राकृत में ही उत्कीर्ण करवाए तथा इसे राजभाषा बनवाया। उसके अभिलेखों में दो प्रकार की लिपियों का मुख्य रूप से प्रयोग मिलता है, खरोष्ठी तथा ब्राह्मी। खरोष्ठी लिपि ईरानियों के प्रभाव से आई और यह देश के पश्चिम उत्तर प्रदेशों तक ही सीमित रही। यह दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी। साम्राज्य के शेष प्रदेशों में ब्राह्मी का प्रचलन था। इस समय संस्कृत शिक्षित समुदाय एवं साहित्य की भाषा थी। मौर्य युगीन साहित्यिक कृतियां बहुत कम ज्ञात हैं। परंपरा के अनुसार इस समय मोगलीपुत्तिस ने कथावथु नामक अभिधम्म पिटक के प्रसिद्ध ग्रंथ तथा भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। यह हिंदू राजतंत्र पर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। कला तथा साहित्य। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व में ही सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। मौर्य युग के पूर्व कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटों तथा घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इसी कारण वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती। मौर्य युग में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई। मौर्य युगीन कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दरबारी अथवा राजकीय कला, जिसमें राजतक्षाओं द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जैसे राजप्रासाद, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप आदि। दूसरा लोक कला, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां आदि। अग्रलिखित पंक्तियों में उपयुक्त दोनों कलाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। पहला दरबारी अथवा राजकीय कला, राजप्रासाद। मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के समय के हैं। अशोक के पूर्व मौर्य युगीन वास्तुकला का ज्ञान हमें मुख्यतः यूनानी लेखकों के विवरण से होता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के अंतर्गत वास्तुकला के जिन लक्षणों की चर्चा करता है उनके अनुसार नगर के चतुर्दिक गहरी परिखा यानी खाई, ऊंचे ब्रप यानी चबूतरा पर बना हुआ प्राकार, प्राकार में यथा स्थान द्वार, कोष्ठ तथा अट्टालक बने होने चाहिए। कहा जा सकता है कि यह विवरण काल्पनिक न होकर वास्तविकता पर आधारित है तथा मौर्य शासकों का नगर विन्यास इसी के अनुरूप रहा होगा। कौटिल्य के इस विवरण की पुष्टि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी हो जाती है। इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा वहां स्थित उसके भव्य राज्य प्रासाद का विवरण दिया है। स्ट्रैबो पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार करता है, पोलीबोथ्रा पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चतुर्दिक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बांध छोड़ने के लिए सुराख बनाए गए थे। इसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राज प्रासाद स्थित था। यह वस्तुतः एक विशाल भवन समूह था जिसमें अनेक बड़े बड़े कमरे थे। इनके चमकते स्तंभों में सोने की लता पत्रावली तथा चांदी की चिड़ियां बनी हुई थी। इनमें सर्व प्रमुख भवन अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के ऊंचे धरातल पर टिका हुआ था। यह राजप्रासाद एक बड़े पार्क के बीच स्थित था। इसमें छायादार एवं हरे भरे वृक्ष लगे हुए थे। यहाँ अनेक सरोवर थे जिनमें विविध आकार प्रकार की मछलियां पाली गई थी। सूसा तथा एक बतना के राजप्रासाद की भव्यता में इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्भहार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे पैलिसेड के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परकोटे की लंबाई 450 फुट तक है। इसमें दोनों ओर लकड़ी के लट्ठों की विशाल दीवारें हैं। प्रत्येक लट्ठा 19 फुट ऊंचा तथा 1 फुट चौड़ा है। लट्ठे की दोनों दीवारों को 14 फुट के बड़े लट्ठों से जोड़ा गया है। अशोक के समय तक आते आते मौर्य काल के बहुसंख्यक स्मारक हमें मिलने लगते हैं। इस समय की कलाकृतियों को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं, स्तंभ, स्तूप, वेदिका तथा गुहा विहार। इनका परिचय इस प्रकार है। स्तंभ, स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैमरिस जैसे विद्वान उन्हें ईरानी स्तंभों की आकृति अनुकृति बताते हैं, किंतु यह समीचीन नहीं है क्योंकि हमें ईरानी तथा अशोक के स्तंभों में कई मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। इनमें कुछ इस प्रकार हैं। अशोक के स्तंभ एकास्मक अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इसके विपरीत ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। दूसरा, अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। तीसरा, ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे, इसके विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। चौथा, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं जो कि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां हैं। पांचवा, ईरानी स्तंभ गड़ारीदार हैं किंतु अशोक के स्तंभ सपाट हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय परंपरा में ही संभव है, किंतु ईरानी स्तंभ शीर्षकों में कोई प्रतीकात्मक नहीं है। छठा, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी है। इस प्रकार हम अशोक स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कह सकते हैं। स्पूनर का विचार है कि मौर्य स्तंभों पर जो ओपदार पॉलिश है वह ईरान से ही ग्रहण की गई है, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने आप स्तंभ सूत्र तथा महाभारत से ऐसे उदाहरण खोज निकाले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि यह पॉलिश भारतीयों को बहुत पहले से ही ज्ञात थी। उनके अनुसार आप स्तंभ सूत्र में मृद भांडों को चमकीला बनाने की विधि के प्रसंग में संलक्षणीकरणे तथा संलक्षणी कुर्वंती चिकना करने के मसालों से उसे चिकना किया जाता था। शब्द प्रयुक्त किया गया है जो ओपदार पॉलिश की प्राचीनता का सूचक है। पिपरहवा बौद्ध स्तूप की धातु गर्भ मंजूसा, पटना की यक्ष प्रतिमाएं, लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकरों के धड़ आदि सभी में चमकीली पॉलिश लगाई गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूर्व मौर्य युग के उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों से काले रंग के चमकीले भांड मिले हैं जिनका समय 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व निर्धारित है। इन्हें NBP यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। यह बर्तनों पर पॉलिश करने की प्राचीनता को ईसा पूर्व 6 शताब्दी में ले जाता है। ऐसी दशा में स्तंभों पर पॉलिश करने का ज्ञान ईरान से लेने की भारतीयों को कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अतः मौर्यकालीन स्तंभ तथा उनकी पॉलिश पूर्णतया भारतीय है। अग्रवाल के शब्दों में मौर्य स्तंभों की परंपरा को लौरिया नंदनगढ़ के कास्ट यूपों में ढूंढना अधिक समीचीन होगा जो हमारे यहाँ ही मौजूद है। बौद्ध साहित्य और महाभारत में ऐसे खंभों का उल्लेख है जो धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए जाते थे। अशोक के स्तंभों का की संख्या निश्चित नहीं है। फायान ने 6 तथा हुएनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है, किंतु वास्तविक संख्या इससे अधिक थी या लगभग 30 रही होगी। इनमें से 15 सुरक्षित हैं, अन्य नष्ट हो गए हैं। ये दो प्रकार के हैं। पहला है स्तंभ जिन पर धम्म लिपियां खुदी हुई थी, दूसरा है स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं। पहले प्रकार में दिल्ली, मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा, संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगाली सागर आदि के स्तंभ आते हैं। दूसरे प्रकार में रामपुरवा यानी बैल शीर्ष, बसाढ़, कोसम आदि प्रमुख हैं। सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल तथा एकास्मक एक ही पत्थर के बने हुए हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। स्तंभ के मुख्य भाग हैं यष्टि, दूसरा यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल यानी घंटे की आकृति, तीसरा फलका एबिकस, चौथा स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है। कुछ विद्वान इसकी तुलना पर्सिपोलिस यानी हखामनी सम्राटों की राजधानी के घंटा शीर्ष बेल कैपिटल से करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे भारतीय पूर्णघट या मंगल कलश का प्रतीक बताया है। इसके ऊपर फलक तांबे की कीलों द्वारा स्थापित है या कुछ स्तंभों में चौकोर तथा कुछ में गोल और अलंकृत है। फलक पर भिन्न भिन्न पशुओं की आकृतियों जैसे हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि मिलती हैं। लौरिया अरराज का स्तंभ शीर्ष नष्ट हो गया है। RP चंद्रा महोदय के अनुसार उस पर गरुड़ की आकृति रही होगी। बसाढ़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। स्तंभों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला बसाढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ, दूसरा संकिसा गज शीर्ष स्तंभ, तीसरा रामपुरवा वृष शीर्ष स्तंभ, चौथा लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ, पांचवा रामपुरवा सिंह शीर्ष स्तंभ, छठा सांची चतुर्सिंह शीर्ष स्तंभ, सातवां सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ। अशोक स्तंभ वास्तु तक्षण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। वे सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी चुनार के बलुए पत्थर से बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फीट तथा प्रत्येक का वजन लगभग 50 टन है। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष लायन कैपिटल सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, लहलहाते हुए केस तथा गठिले अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता चतुरता के साथ बनाए गए हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। इनसे चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है, अथवा इन्हें शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है जो जन्मना चक्रवर्ती थे। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था जिसमें मूलतः 32 तीलियां स्पोक्स थी। यह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। सिंहों के नीचे की फलका पर चारों दिशाओं में चार चक्र बने हुए हैं जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। इसी पर चार पशुओं गज अश्व बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनके प्रतीकात्मक अर्थ के विषय में अनेक मत दिए गए हैं। वोगेल का विचार है कि ये अलंकरण की वस्तु मात्र हैं जिनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है। ब्लाख ने इन्हें चार हिंदू देवताओं इंद्र सूर्य शिव तथा दुर्गा का प्रतीक माना है क्योंकि हिंदू धर्म में हाथी इंद्र का अश्व सूर्य का वृष शिव का तथा सिंह दुर्गा का वाहन माना गया है। उनके अनुसार इनके अंकन के पीछे शिल्पी का उद्देश्य यह था कि इन्हें बुद्ध के वशवर्ती दिखाया जाए। फूसे की धारणा है कि ये पशु बुद्ध के जीवन की चार महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार हाथी उनके गर्भस्थ होने, जिसमें उनकी माता माया ने एक श्वेत हाथी को स्वर्ग से उतर कर अपने गर्भ में प्रविष्ट होते हुए देखा था। वृष जन्म यानी बुद्ध की राशि वृष थी। अश्व गृह त्याग तथा सिंह बुद्ध का प्रतीक है जो स्वयं में शाक्य सिंह थे, किंतु वीएस अग्रवाल की मान्यता है कि इन पशुओं को किसी संकीर्ण दायरे में सीमित करना उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इनकी परंपरा सिंधु घाटी से लेकर 19वीं सदी तक मिलती है। भारत के बाहर लंका बर्मा श्याम तिब्बत आदि में भी इनका अंकन मिलता है। महावंश में इन्हें चतुष्पद पंक्ति कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में इनकी गणना उन मांगलिक द्रव्यों में की गई है जिन्हें राम के अभिषेक के अवसर पर मंगाया गया था। रीतिकालीन कवि केशवदास 17वीं सदी ने राम के राजमहल के चार द्वारों के रक्षक के रूप में इन पशुओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक भावना में इन चार पशुओं को मंगल सूचक माना जाता था। हिंदू तथा जैन परंपरा में भी इन चारों पशुओं को मांगलिक द्रव्यों में स्थान दिया गया है। बौद्ध परंपरा में ये चारों पशु ब्रह्मांड के प्रतीक अन्वतप्त सरोवर जिसमें बुद्ध ने स्नान किया था के चार द्वारों के रक्षक कहे गए हैं जहां से चार महान नदियां निकलती हैं। प्रत्येक पशु का संबंध एक एक चक्र से है। चक्र प्राण रूपी पुरुष है। इस प्रकार प्रत्येक युग्म पुरुष पशु का प्रतीक है। प्रथम दैवी शक्ति तथा द्वितीय भौतिक तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार ये सभी चित्र अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर हैं। मार्शल के शब्दों में सारनाथ का सिंह शीर्ष यद्यपि अद्वितीय तो नहीं है तथापि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संसार में कला का जितना विकास हुआ था उसमें यह सर्वाधिक विकसित कलाकृति है। इसमें शिल्पी को पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त था। इसी प्रकार स्मिथ ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, शिल्पी की निपुणता सबसे अधिक पूर्णता को प्राप्त हो गई तथा आज 20वीं सदी में भी कला का ऐसा प्रदर्शन असंभव है। 30-40 फुट ऊंचे स्तंभों की यष्टियां ऐसी प्रभा से मंडित है जिसका रहस्य आज भी विश्व का कोई देश नहीं जानता। अब स्तूपों की बात करें, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। इसके लिए प्राकृत शब्द धूप मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। चैत्य शब्द ची धातु से निकला है जिसका अर्थ है चयन करना। इसमें पत्थर या ईंट चुनकर भवन तैयार किए जाते थे। चियते पाषाणादिना इति चैत्यम। इस शब्द का संबंध चित्त तथा चिता से भी है। स्तूप तथा चैत्य में मुख्य भेद यह दिखाई देता है कि चैत्य पर्वत गुफाओं में खोदा जाता था। इसमें स्तूप का आकार वर्तमान रहता था तथा उसमें अवशेष नहीं रखे जाते थे। इसके विपरीत स्तूप के भीतरी भाग में पात्र में अवशेष रखकर भवन बनाया जाता था। स्तूप समतल भूमि में ईंट पत्थर की सहायता से बनाए जाते थे। स्तूप चार प्रकार के बताए गए हैं, शारीरिक पारिभागिक उद्देशिक संकल्पित। स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्ध गोलाकार यानी हेमिस्फेरिकल मिलता है। मौर्य काल के पूर्व बुद्ध के शरीर धातु पर निर्मित कराए गए 8 स्तूपों में से केवल पिपरहवा स्तूप के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीन यात्री हुवेन सांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु आदि स्थानों में स्तूपों को देखा था, परंतु दुर्भाग्यवश आज ये सभी नष्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल रॉयलट ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। 1888 में मेजर कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ करवाया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ ही उसके दक्षिणी पश्चिमी तोरण द्वारों तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया था। यहाँ से एक बड़ा तथा 2 छोटे स्तूप मिले हैं। मार्शल के अनुसार महास्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। यह ईंटों का बना था जिसके चारों ओर लकड़ी का बाड़ यानी कि रेलिंग्स लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय में ही करवाया गया था, जिन्हें परवर्ती शासकों ने परिवर्धित करवाया। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने थे। सारनाथ स्थित धर्मराजिका स्तूप के चारों ओर छोटे छोटे पूजार्थक स्तूप बनवाए गए थे जिनके ध्वंसावशेष मिलते हैं। उसी के पास अशोक का स्तंभ लेख है। दोनों स्तूपों के ध्वंसावशेष यह सूचित करते हैं कि इनका आकार काफी विशाल रहा होगा। अब हम बात करते हैं पाषाण वेदिका। मौर्ययुगीन स्तूप तथा विहार वेदिकाओं यानी रेलिंग्स से घिरे होते थे। इनमें से कुछ के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक अपने रुमिनदेई यानी लुम्बिनी स्तंभ लेख में स्वयं कहता है कि उसने पत्थर की विशाल दीवार शिला विगड़ भीचा बनवाई थी। घोसुंडी लेख में इस प्रकार के बाड़े को प्रकार कहा गया है। बोध गया से एक वेदिका के अवशेष मिले हैं। इनका निर्माण अशोक के समय में हुआ था। इसे बोधिमंड कहा जाता है। वेदिका के खंभों तथा उनके जोड़ने वाली लंबी पाषाण शिल्पा पट्टिकाओं पर कमल की आकृति बनी है। कहीं कहीं अश्व, हाथी, मकर आदि की आकृतियां भी उत्कीर्ण मिलती हैं। सारनाथ से भी अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली है। इसे एक ही पत्थर में काटकर चौकोर बनाया गया है। इसके 2 स्तंभों के बीच में 3 सूचियां हैं तथा स्तंभों के ऊपर उसनिस हैं। यह आकर्षक, सुंदर एवं चिकनी है। पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं जो अपनी चमकीली पॉलिश के कारण मौर्ययुगीन माने जाते हैं। सांची से मौर्ययुगीन स्तूप की ईंटों के अतिरिक्त पाषाण का एक खंडित छत्र भी प्राप्त होता है। पाषाण वेदिकाओं के अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि इस समय वास्तु में पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अब हम बात करते हैं गुहा विहार की। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविका के लिए आवास बनाए गए थे। इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तथा द्वितीय का 19वें वर्ष में करवाया था। सुदामा की गुफा में 2 कोष्ठ हैं। इनकी छत ढोल आकार है। दोनों कोष्ठों की दीवारों तथा छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश है। इसे सूचित होता है कि इस गुफा की रचना अशोक के समय में ही की गई थी। दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमस ऋषि नाम की गुफा उल्लेखनीय है। यह बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है जिसका वास्तु विन्यास सुदामा की गुफा के ही समान है। अंतर केवल यही है कि इसका आंतरिक कोष्ठ वर्गाकार न होकर अंडाकार है। इसका निर्माण कार्य बड़ी सावधानी से हुआ है तथा यह कालांतर में चैत्य गृहों के अग्रभाग को सुसज्जित करने वाले अलंकरणों की बृहद योजना के प्रारंभ का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। The cave has been finished with great care and is important as representing the beginnings of the elaborate scheme of ornamentation that characterized the decoration of the facades in the Chaitya halls of latter days. Age of Imperial Unity, page number 498. इस गुफा का प्रवेश द्वार सर्वोत्तम है। दोनों पंखों पर तिरछे खड़े दो स्तंभ हैं, जिनके ऊपर गोल मेहराब बने हुए हैं। इनके बीचों बीच एक स्तूप तथा दोनों किनारों पर हाथियों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। बराबर पहाड़ी की चौथे गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण भी अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष हुआ था। इसमें दो कोष्ठ हैं। इनकी दीवारों पर चमकीली पॉलिश मिलती है। नागार्जुनी पर्वत पर कुल 3 गुफाएं खोदी गई हैं। नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ग में बनवाया था। यह सुरंग के आकार की है, जिसके दोनों सिरों पर दो गोल मंडप बने हैं। इनमें एक गर्भगृह तथा दूसरा मुख मंडप जान पड़ता है। इसमें मौर्यकालीन गुहा स्थापित की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी वहीयक तथा तीसरी वड़गिक नाम से जानी जाती है। वहीयक में केवल एक प्रकोष्ठ है, जिसके सम्मुख छोटा मुख मंडप बना है। तीसरी अर्थात वड़गिक गुफा भी लंबाई में वहीयक के ही समान है, किंतु इसकी दीवारें वक्राकार हैं। इन सभी का निर्माण दशरथ के समय में करवाया गया था। इनके अतिरिक्त राजगृह से 13 मील की दूरी पर स्थित सीतामढ़ी गुफा है। यह किसी पहाड़ी पर नहीं है, अपितु इसे स्वतंत्र रूप से ग्रेनाइट पत्थर को भीतर खोदकर बनाया गया है। इसमें आयताकार कक्ष तथा दो द्वार स्तंभ है। इसे भी मौर्यकालीन माना जाता है। इस प्रकार मौर्य युग में गुहा स्थापत्य का पूर्ण विकास हुआ। कालांतर में इन्हीं गुफाओं के अनुकरण पर पश्चिमी भारत में अन्य चैत्य गृहों का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे मूर्तिकला की। मौर्ययुगीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में दर्शनीय है। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को सूचित करती है। हाथी अत्यंत विशाल आकार का है, जिसके अग्रभाग को उकेरा गया है। उसके सूंड, पैर आदि की गढ़न अत्यंत स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी सूंड में कोई वस्तु लपेटकर उठा रहा है। हाथी चट्टान से बाहर निकलते हुए जान पड़ता है। इसी प्रकार कालसी यानी देहरादून उत्तर प्रदेश की चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई मिलती है। हाथी के पैरों के बीचों बीच मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में गजोत्तमः अर्थात सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ है। हाथी की दोनों ही आकृतियां उत्कीर्ण रिलीफ मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब हम बात करेंगे लोक कला की। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, मौर्य युगीन कलाकारों ने लोक रुचि की वस्तुओं का भी निर्माण किया। उनका तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। लोक कला के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विभिन्न स्थानों से मिली हुई पाषाण निर्मित विशाल काय यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं का उल्लेख कर सकते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला, मथुरा जिले के परखम ग्राम से मिली यक्ष मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा गया है। दूसरा, मथुरा जिले के बड़ौदा ग्राम से मिली यक्ष प्रतिमा। तीसरा, मथुरा के झींग का नगरा ग्राम से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा। चौथा, मथुरा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा। पांचवा, पद्मावती ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्ष प्रतिमा। छठा, पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमा। सातवां, पटना से प्राप्त दो यक्ष प्रतिमाएं। आठवां, बेसनगर यानी विदिशा से प्राप्त यक्षी की प्रतिमाएं। नौवां, राजघाट यानी वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा। दसवां, विदिशा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा। ग्यारहवां, शिशुपालगढ़ यानी उड़ीसा से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं। बारहवां, कुरुक्षेत्र में आमिन से प्राप्त यक्ष प्रतिमा। तेरहवां, मेहरौली से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा। उपयुक्त सभी प्रतिमाएं विशाल आकार प्रकार की हैं, जिन्हें सभी ओर से तराशकर तैयार किया गया है। इनके शरीर पर वस्त्र तथा आभूषण अत्यंत मनोहर हैं। विद्वानों का विचार है कि इन्हीं यक्षी प्रतिमाओं के आधार पर कालांतर में बुद्ध, बोधिसत्व तथा जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया था। यक्षी प्रतिमाएं लोक धर्म का प्रमुख आधार थी। इन्हें सर्वत्र देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। इन मूर्तियों के अतिरिक्त पटना के निकट लोहानीपुर से दो जैन दिगंबरों की प्रतिमाओं के धड़ तथा सारनाथ से दो पुरुष मूर्तियों के मसाक प्राप्त होते हैं, जिनकी चिकनी पॉलिश तथा चुनार के बलुए पत्थर के आधार पर उन्हें मार्शल आर पी चंद्रा, कुमारस्वामी आदि विद्वानों ने मौर्यकालीन बताया है। इसी प्रकार सारनाथ, अहिछत्र, मथुरा, हस्तिनापुर, कौसाम्बी, बुलंदीबाग, वसाढ़, कुम्हराहार आदि अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियों जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण, पक्षियों तथा नर नारियों की बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें हाथ से सांचे में ढालकर बनाया गया है। इन मृण मूर्तियों को भी विद्वान मौर्यकालीन मानते हैं, परंतु निहार रंजन राय उपयुक्त मूर्तियों को उनकी कल्पना तथा शैली के आधार पर मौर्य युग का नहीं मानते हैं। उनके अनुसार पत्थर पर शीशे की तरह चमकीली पॉलिश लगाने की कला मौर्य कलाकारों ने हखामनियों से सीखी थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी यह कला जीवित रही तथा शिल्पी कुछ समय बाद तक चुनार के पत्थरों का ही प्रयोग करते रहे। अतः पूर्ण आकार की सांचे में ढली हुई गोल मूर्तियां भारतीय कला के भिन्न भिन्न स्तरों से संबंधित हैं। ये सभी आकार, प्रकार, शैली तथा बनावट में भारतीय हैं और मौर्यों की दरबारी कला से उनका कोई संबंध नहीं है। दीज लाइफ साइज प्लास्टिकली राउंड स्टेच्यूज belong to different aspects and faces of Indian art. They are all Indian in form and appearance, in style and treatment, and they have hardly any relation with the court art of the Mauryas. Maurya and Shunga art, page 53. और इस प्रकार इस अध्याय का समापन होता है। धन्यवाद।